بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کمانڈو سیریز کی جلد نمبر 5 دلی ایکشن ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب 7 جلدوں پر مشتمل ہے جن کے نام یہ ہیں: کمانڈو جلد نمبر 1 ٹارگٹ پٹھان کوٹ، کمانڈو جلد نمبر 2 کشمیر کے سرپروش، کمانڈو جلد نمبر 3 کالی ماتا کے ناک، کمانڈو جلد نمبر 4 کانتا زہریلی لڑکی، کمانڈو جلد نمبر 5 دلی ایکشن، کمانڈو جلد نمبر 6 قاتل سگار، کمانڈو جلد نمبر 7 ہینڈز اپ. اس کتاب کے مصنف ہیں اے حمید. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321 2138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. کمانڈو سیریز جلد نمبر 5 ایک محب وطن پاکستانی کمانڈو کی سچی داستان. دلی ایکشن. مصنف اے حمید. مقبول اکیڈمی، سرکلر روڈ چوک، اردو بازار، لاہور. جملہ حقوق محفوظ ہیں. سن 2000. اہتمام مقبول. ملک مقبول احمد. مقبول اکیڈمی 199 سرکلر روڈ چوک، انارکلی، لاہور. قیمت 500 روپے. مطبعہ خورشید مقبول پریس، لاہور. پیارے بیٹے مسعود حمید بٹ کے نام. صفحہ نمبر 7. نہر کے پاس آ کر سکھ رام داس پورے کی طرف جانے کے بجائے ہندو مندر سے چند قدم پیچھے نیچے کھیت میں اتر گیا. میں نہر کے کنارے ایک درخت کی اوٹ میں سے اسے اندھیرے میں جاتے دیکھتا رہا. کھیت جہاں ختم ہوتا تھا وہاں ایک مکان کی دیوار مجھے دھندلی نظر آ رہی تھی. یہ مکان کی عقبی دیوار تھی. اس دیوار کے اس کے دروازے کی جانب دھیمی روشنی ہو رہی تھی. اب میں بھی نشیب میں اتر کر کھیت میں سے گزرتا سکھ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ مکان کی دیوار گھوم گیا. میں نے دوسری طرف سے آ کر دیکھا سکھ غائب تھا. اتنی دیر میں وہ اگر دوسرے کھیت کی طرف بھی گیا ہوتا تو مجھے نظر آ سکتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اسی مکان میں داخل ہوا ہے. یہ مکان ایک منزلہ تھا اور کھیت میں اکیلا ہی کھڑا تھا. اس کے دونوں جانب کھیت تھے اور پہلو کی طرف ٹہلی کے درخت خاموش کھڑے تھے. میں مکان کی عقبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے. تو اس سکھ کا اپنا گھر ہوگا, یہاں سے وہ باہر نہیں نکلے گا. میں دیوار سے الگ ہو کر چلنے لگا تو مجھے کسی مرد کے گالی دینے کی آواز آئی. میرے قدم وہیں رک گئے. گالی پنجابی میں کسی عورت کو دی گئی تھی. میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا دیوار کی دوسری طرف آ گئے. یہاں دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو بند تھی. میں نے آہستہ سے کھڑکی کے پاس جا کر کان لگا دیے. اندر سے مرد کی آواز پھر سنائی تھی. وہ پنجابی میں کہہ رہا تھا سانو خوش نہیں کرو گی تو دھنا سنگھ تجھے جہلندر کے دلال کے پاس بیچ دے گا. میرے کان کھڑے ہو گئے. جس معاملے کو میں حل کرنا چاہتا تھا اس کے چہرے پر سے آہستہ آہستہ پردہ سرک رہا تھا. یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ سونیا تھی؟ میں اس عورت کی آواز سننے کو بیتاب تھا. مجھے سسکیوں کی آواز آئی. کوئی عورت سسکیاں بھر رہی تھی. مرد کی آواز پھر بلند ہوئی. وہ گالیاں دے کر کہنے لگا رونے سے کیا ہوگا مسلیے, تو اب ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی. اب عورت کی کمزور فہمی ہوئی آنسو بھری آواز آئی. میں سر سے پاؤں تک جیسے کانپ اٹھا. یہ سونیا کی آواز تھی. اگرچہ بے حد غمزدہ اور کمزور آواز تھی مگر میں اس کی آواز کو ہر عالم میں ہر موڑ پر پہچان سکتا تھا. وہ اردو میں کہہ رہی تھی مجھے جانے دو, میری زندگی برباد نہ کرو, میں بڑی دکھی عورت ہوں. اس کے بعد مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی. سونیا اس مکان میں قید تھی. میں دیوانہ وار مکان کے دروازے کی طرف بڑھا. دروازہ بند تھا. دروازے کے اوپر کمزور سا بجلی کا بلب جل رہا تھا. میں نے اچھل کر دیوار کی منڈیر کو پکڑ لیا اور پھر دیوار کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف صحن میں بڑی احتیاط سے اتر گیا. صحن چھوٹا سا تھا. دو چار پائیاں بچھی تھی. اندھیرے میں سامنے چھوٹا سا برامدہ دکھائی دیا. میں دبے پاؤں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا برامدے میں آ گیا. یہاں دو کوٹریاں تھیں. دونوں کے دروازے بند تھے. ایک کوٹری میں سے دھیمی دھیمی روشنی بند دروازوں کی درزوں میں बंद दरवाजों की दर्दों में से बाहर आ रही थी सोनिया की आवाज। इसी कोठरी से एक बार फिर सुनाई थी, वो रोते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। सांस में रुक नहीं सकता था, मेरी सारी ताकत सिमट कर मेरे बाजू में आ गई। मैंने कहंते से बंद दरवाजे पर एक जोरदार जर्ब लगाई, दरवाजा धड़ाक से खुल गया। सामने चारपाई पर बिजली की धीमी रोशनी में वही सिख जवान जिसका मैं ताकुब कर रहा था, गिलास हाथ में लिए बैठा एक दर्द चेहरे और बिखरे हुए परेशान बालों वाली लड़की को खींच रहा था। दरवाजे के अचानक खुल जाने पर वो भूचका सा होकर रह गया। उसने अपने सामने एक सिख यानी मुझे देखा तो गाली देकर बोला, कौन हो ये तुम? मेरे पास जवाब देने की फुर्सत कहाँ थी, सस्ना में उसके सर पर पहुंच चुका था। मैं शदीद गजब और जोश के आलम में था। मैंने पूरी ताकत से बाएं हाथ की हथेली का किनारा जो फौलाद की तरह सख्त हो चुका था उस सिख की थोड़ी के नीचे उसके हलक पर मारा। ये जर्ब इतनी शदीद थी कि वो पीछे को चारपाई से नीचे गिर पड़ा। गिलास उछल कर सामने फर्श पर गिरा और चिकना चूर हो गया, मगर वो ताकतवर सिख था, इतनी शदीद जर्ब खा कर भी उठ बैठा। मैंने उसे संभलने का मौका ना दिया, शायद वो जेब में हाथ डालकर चाकू या असला निकालने की कोशिश में था कि मैंने अपने माथे की भरपूर टक्कर उसके माथे पर मार दी। से वो तेबरा गए, एक चक्कर खाकर दोबारा नीचे गिर पड़ा। अपने से उठने का मौका नहीं दे सकता था। चंद सेकंड में वो मेरे ताबड़तोड़ घूसों की बारिश से बेहोश हो गया। सोनिया पहले तो चारपाई से उठकर दीवार के साथ सहमी खड़ी रही, फिर वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने उससे आवाज दी, सोनिया रुक जाओ, मैं आमिर हूँ। पहले तो वो मुझे भी धन्ना सिंह के साथियों में से कोई सिख ही समझ रही थी, जो उसे पहले वाले सिख के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेने के लिए आया था। लेकिन जो ही उसने अपना नाम और फिर मेरा नाम सुना तो बरामदे में उसके कदम वहीं जम से गए। मैं लपक कर बरामदे में गए, उसे खींच कर अंदर ले आया। इस बात का मुझे एहसास हो गया था कि इस मकान में और कोई नहीं है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कमजोर बल्ब की रोशनी में सोनिया मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसका जरीना साथी आमिर हूँ। यकीन आता भी कैसे, मेरा हुलिया पूरा सिख का था, वो मुझे सिख समझने में हक बजानिब थी। मैंने उसे चारपाई पर बिठाया और आहिस्ता से कहा, मैं आमिर हूँ। सोनिया, मैंने सिख का हुलिया बना रखा है, मुझे पहचानो। अब सोनिया ने मुझे पहचान लिया था, वो मुझसे लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने उसे हौसला देते हुए चारपाई की दूसरी जानेब फर्श पर बेहोश पड़े सिख को देखा। वो अभी तक बेहोश था। मैंने सोनिया से कहा, सब बातें बाद में होंगी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आ गया हूँ। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, हौसले से काम लो, हमें अभी यहाँ से फरार होना है। सोनिया पहले से जर्द और कमजोर हो गई थी, उसका रंग भी फीका पड़ गया था, आंखों के गिर्द हल्के साफ नजर आ रहे थे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बेहोश सिख की पगड़ी खोलकर उसको आधा फाड़ा, आधी पगड़ी से सिख का मुंह कसकर बांध डाला और पगड़ी के दूसरे आधे टुकड़े से उसके हाथ पीछे बांधकर चारपाई के पाए से जकड़ दिया। मैंने सोनिया के लिबास को देखा, उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, गले में दुपट्टा था। मैंने उसे कहा, इस दुपट्टे से अपना सर ढांप लो और मेरे साथ बाहर निकलो। सोनिया ने कपकपाई हुई आवाज में पूछा, हम कहाँ जाएंगे आमिर? मैंने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ तकरीबन खींचते हुए कहा, ये वक्त ऐसी बातें पूछने का नहीं है। सोनिया मेरे साथ आओ, जल्दी करो, यहाँ किसी वक्त भी कोई आ सकता है। अंधेरी रात में हम मकान से निकलकर बाहर खेत में आ गए। सोनिया ने दुपट्टा अपने सर के ऊपर लपेट रखा था, वो भी सिखनी यानी सिख औरत लगती थी। रात के 10:30 का अमल होगा, आसमान पर जो बादल दिन भर से छाए हुए थे अब उनमें हल्की सी गरज सुनाई थी। नहर पर आकर मैंने बाउली की तरफ जाने के बजाय कंपनी बाग वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि बाउली वाला रास्ता ना सिर्फ तारीख बल्कि सुनसान था। कंपनी बाग वाला रास्ता आगे जाकर सुनसान नहीं रहता था, क्योंकि इसके आगे नहर की दोनों जानिब कोठियां शुरू हो जाती थी। गर्मियों की रातों में 10:30 बजे तक लोग कंपनी बाग के आसपास सैर सपाटे में मशगूल रहते थे। मैंने नहर के किनारे किनारे चलते हुए सोनिया को अपने बारे में मुख्तसर लफ्जों में बहुत कुछ बता दिया। उससे जुदा होकर मैं कहां दरबदरी करता फिरा, उसकी तलाश में किन किन होशरबा हालात से गुजरा। सोनिया ने भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि अब उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अपने वतन पहुंच जाएंगे, उसे भी मिस्र उसके माँ बाप के पास पहुँचा दिया जाएगा। मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि मिस्र में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालदा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हकीकत यह है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ अब जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमें अपनी पड़ी हुई थी। सोनिया ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि हम सीधे बॉर्डर की तरफ जाएंगे। मैंने उसे बताया कि यहाँ हमारा एक अपना आदमी मौजूद है। बातें करते करते हम नहर के उस इलाके से गुजर रहे थे जहाँ दोनों जानिब कोठियां थी। उनके लॉन में कहीं कहीं लोग मच्छरदानियां लगाकर सो रहे थे, कहीं लॉन में पंखे लगाकर बैठे हुए खुशगबियों में महफ से आगे एक सड़क आ गई। नहर यहाँ सड़क के नीचे से होकर दूसरी जानिब कंपनी बाग के फूलों भरे तख्तों की तरफ जाती थी। मैंने सोनिया को साथ लिया और बाएं जानिब डंडा पुलिस लाइन के सामने से होकर ईदगाह वाले पुराने रेलवे फाटक पर आ गया। फाटक खुला था, फाटक पार कर लिया, सामने आरामबाग के इलाके की रोशनियां नजर आ रही थी। हमारा आदमी इसी बस्ती के एक बाजार में था। आपने शुरू में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसका नाम तो कुछ और था मगर हम उसे चोई के लकब से याद करते थे। चोई ने रामबाग के एक बाजार में होटल खोल रखा था और यहाँ उसका हिंदुआना नाम था, जो यहाँ मैं नहीं लिखना चाहता बल्कि एहतियात के तौर पर इस दफा मैंने इलाके का नाम भी बदल दिया है। मुझे और सोनिया को जाते देखकर किसी को जरा सा भी शक नहीं हो सकता था कि हम दोनों सिख और सिखनी नहीं है। जब मैं चोई के होटल में दाखिल हुआ तो वो भी मुझे ना पहचान सका। वो काउंटर के पास ही कुर्सी पर बैठा कोका कोला पी रहा था। काउंटर पर उसका मुंशी हिसाब किताब करने में मसरूफ था। होटल के बड़े कमरे में दूसरे नौकर फर्श धो रहे थे। रात के 11 बजने वाले थे। चोई ने हमारी तरफ देखकर कहा, सरदार जी भोजन भाजी खत्म हो चुका है, कमरे भी सारे बुक है। मैं और सोनिया कोने में जाकर कुर्सियों को सीधा करके बैठ गए। अब चोई ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और खुद उठकर हमारे पास आया। बोला, सरदार जी मुझे क्षमा कर दें, इस वक्त हमारे पास कमरा भी नहीं और भोजन भी खल्लास है। मैंने मुस्कुराते हुए इशारे से अपनी तरफ बुलाया। चोई चूंकि काम ही इस किस्म का करता था इसलिए उसका माथा ठनका और सिगरेट सुलगाते उसने पीछे देखकर मुंशी से कहा, हीरा लाल काम खत्म हो गए तो तुम चले जाओ, रात काफी हो गई है। चोई हमारे पास आ गया मगर उसने अपने किसी अंदाज से भी ये जाहिर ना होने दिया कि वो हमें अपना आदमी समझता है। बोला, चाय इस वक्त मिल सकती है। मैंने उसका हाथ थाम लिया, उसके करीब मुंह ले जाकर उसका असली मुसलमानों वाला नाम लेकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो एक सेकंड के लिए साकित सा होकर मुझे तकने लगा, जहां दीदा आदमी था और फिर मैंने उसके पास काफी वक्त गुजारा था, फौरन पहचान गया। मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से बोला, आमिर। मैंने कहा, अब ये नाम फिर मत लेना। चोई उठा और एक नौकर की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओए तोता राम, चाय के दो कप बनाकर लाओ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सरदार जी क्षमा करो कि हम इस वक्त आपको चाय के साथ डबल रोटी के दो चार स्लाइस ही पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, सोचे दरबार साहब जाकर कुछ भोजन पानी कर लेंगे मगर रास्ते में आपका ढाबा देखा तो रुक गए कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। चोई ने अब हमसे कोई बात न की, वो वापस जाकर काउंटर पर बैठ गए। उसका मुंशी रजिस्टर बंद करके उसे राम राम कहता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद हमारे सामने चाय और स्लाइस आ गए। मैं और सोनिया चाय पीने और स्लाइस खाने लगे। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या ये हमारा एजेंट है? मैंने सरगोशी में कहा, यह हमारा बाकायदा एजेंट नहीं है, असल में ये स्मगलरों का यहाँ सरदार है लेकिन इसकी हमदर्दियाँ हमारे मुल्क के साथ है और मेरा पुराना दोस्त है, ये हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। सोनिया दोनों स्लाइस खा गई। शायद एक अरसे के बाद उसे इत्मीनान से कुछ खाने का मौका मिला था। जब होटल का आखिरी नौकर भी चला गया तो चोई अपनी कमीज को हवा देता हुआ एक भारतीय फिल्मी गाना गुनगुना तो हमारे करीब आया। बोला, आमिर तुम्हें ऊपर वाली मंजिल में वो कमरा तो नहीं भूला होगा जहाँ तुम अक्सर आकर ठहरा करते थे। मैंने कोई जवाब देने के बजाय सोनिया को इशारा किया। हम उठे और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ साथ साथ तीन कमरे थे। मुझे माजी का वो जमाना याद आ गया जब मैं अपने मिशन के लिए पहली बार चोई के आदमियों की वसात से बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद यहाँ आया था। मैं कोने वाले कमरे में आकर ठहरा था। उसके बाद अपने मिशन के सिलसिले में जब भी मेरा अमृतसर आना होता तो मैं इसी कमरे में रात बसर किया करता था। हम कमरे में आगे, कमरे में वही पलंग, सिंघार मेज, दो कुर्सियां, छोटी गोल मेज पड़ी थी। मैंने छत का पंखा चला दिया। थोड़ी देर बाद चोई भी आ गया। उसने आते ही पूछा, ये औरत कौन है? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बताया कि ये हमारे वतन की एक अमानत है जो दुश्मन के मुल्क में कैद थी, अब मैं से यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं से अपने साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। वो सोच में पड़ गया, सिगरेट फर्श पर फेंक कर पांव तले मसला और कुर्सी पर बैठ गया। आजकल बॉर्डर की हालत बड़ी खतरनाक है, सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंडियन फौज भी गश्त लगाती है, खुद हमने अपने आदमियों को आने से मना कर रखा है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने वतन से बेपनाह प्यार भी करते हो। तुमने पाकिस्तान के लिए यहाँ रहकर बहुत काम किया, कई बार अपनी जान तक खतरे में डाली है, ये भी वतन अजीज की जानिब से हम पर आयद एक फर्ज है जिसे हमें अदा करना है। अगर मुझे नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करो कि कम अज कम सोनिया को भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचा दो। चोई उठते हुए बोला, अभी तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे, अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ दो पलंग है। मैं सोनिया को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, उसके कमरे में सोना भी मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, सोनिया इस कमरे में ही सोएगी, मैं कमरे के बाहर चारपाई बिछा कर लेट जाऊंगा। चोई बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी मगर मुंह अंधेरे तुम्हें कमरे के अंदर चले जाना होगा क्योंकि सुबह सुबह मेरे हिंदू नौकर आ जाते हैं, तुम लोगों को यहाँ बेहद एहतियात करनी होगी। सोनिया को भी समझा देना कि ये किसी से गैर जरूरी बात ना करे। वो चला गया। मैंने सोनिया की अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दी। और कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीवार के साथ एक चारपाई लगी थी, उसे कमरे के आगे डाला, खाली चारपाई पर लेट गया। ऊपर आसमान नजर आ रहा था, बादल अब गरज नहीं रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही थी, ठंडी हवा का झोंका कभी कभी आ जाता था। सोनिया ने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी। दो दिन तक हम इस होटल में तकरीबन रपोशी की हालत में रहे। शाम के वक्त मैं थोड़ी देर के लिए हॉल दरवाजे की जानिब निकल जाता था। तीसरे दिन हमारे दोस्त जोई ने बताया कि उसने एक खास आदमी को ये पैगाम देकर बॉर्डर पार भेजा है कि हम दोनों को सरहद पार ले जाने का कोई दूसरा जरिया अख्तियार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरहद सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के दस्तों की गश्त दिन रात जारी रहती है। ऐसी सूरत हाल में कितिया नाड़ी लड़की का बॉर्डर क्रॉस कराना खतरनाक हो सकता है। मुझे इसका ये तरीकेकार कुछ नामुनासिब लगा, क्योंकि मैं इस मामले में हाई कमांड को मुलविस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एक रोज मुझे जोई ने आकर बताया कि सरहद पार से एक आदमी मुझसे मुलाकात के लिए खसूसी तौर पर भेजा गया, तो मैं दिल में कुछ हैरान सा हुआ, क्योंकि ये मसला इतना संगीन और इस कदर अहमियत का हामिल नहीं था। बहरहाल मुझे इस अमर से खुशी हुई कि सोनिया अब वापस अपनी माँ के पास पहुँचा दी जाएगी, कम अज कम उसकी मुसीबतें तो खत्म होंगी। जो आदमी सरहद पर से आया था उसने अमृतसर में दाखिल होते ही मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। जो उसे लेकर मेरे कमरे में आ गया। सोनिया दूसरे कमरे में सो रही थी। सरहद पार से आने वाला आदमी हिंदू जोगी के भेष में था। मेरे कमरे में तुलसीदास की लिखी हुई रामायण के अशार गुनगुनाता हुआ दाखिल होना, हम दोनों ही ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया हम वही हैं जो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसने खास कोड लफ्ज बोला, मैंने भी उसका जवाब जब कोट लफ्ज ही में दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। चोई को उसने पहले ही नीचे भेज दिया था। दरवाजा बंद करते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया और बोला, हम कई रोज से तुम्हारी तलाश में थे। हमने भारत के कई शहरों में अपने खुफिया आदमियों से तुम्हारे बारे में पूछा, मगर किसी तरफ से कोई तसली बख्श जवाब ना मिला। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं एक तवील और दुश्वार जिद्दोजहद के बाद सोनिया को दुश्मन की कैद से निकाल लाने में कामयाब हुआ। मैं चाहता हूं कि पहली फुर्सत में उसके साथ सरहद पार करके अपने प्यारे वतन पहुंच जाऊं। अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया की तुम फिक्र ना करो, हम उसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें यहां से यूरोप के एक और मुल्क में जाना होगा। मैं अपने एजेंट का साधुओं वाला चेहरा तकने लगा, ये उसने क्या कह दिया, मैं यूरोप जाकर क्या करूंगा। जब मैंने उसे यही सवाल किया तो उसने मेरे कंधे को आहिस्ता से दबाया और बोला, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा, तुम जल्दी से सोनिया को तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम रात 9:15 बजे वाली गाड़ी में चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। चंडीगढ़ मैंने इस्तफार किया तो अपने एजेंट ने होठों पर उंगली रख दी, मैं चुप हो गया। उसने मेरे करीब होकर कहा, इस होटल वाले दोस्त को भी मत बताना कि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं तुम्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। ये कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जोई मेरे कमरे में आ गया, पूछने लगा कि क्या प्रोग्राम बना है। मैंने उसे कहा कि अपना एजेंट हमें रात को पुतली घर के करीब किसी जगह छुपा कर रखना चाहता है, जहाँ से वो रात के पिछले पहर हमें लेकर सरहद की तरफ रवाना होगा। जोई को मैंने चंडीगढ़ के बारे में कुछ न बताया। जोई बोला, ये लोग तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे आमिर, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, हमारी पहुंच तो बड़ी महदूद होती है। उसने तुम्हें बता दिया है कि पुतली घर कहाँ जाना होगा? मैंने कहा कि हाँ, एक खास जगह पहुंचने के लिए मुझे कहा गया है। जोई ने फौरन कहा, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे नौकरों की नजरों में आ गए हो, कहीं कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए, मुझे यही डर है। मैंने जाकर सोनिया को सारी बात समझाई, वो उसी वक्त तैयार हो गए। मैंने उसे साथ लिया और होटल से निकलकर हॉल दरवाजे में से गुजरते दरवाजे पर आकर एक साइकिल रिक्शा करवाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अगरचे गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मैं ये वक्त रेलवे स्टेशन पर ही गुजारना चाहता था। मैंने चंडीगढ़ के 2 टिकट खरीदे और सोनिया के साथ प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर आकर बैठ गए। मैं सर से पांव तक सिख बना हुआ था और सोनिया भी सिख नहीं लगती थी। मैंने एहतियात के तौर पर उसे हिदायत कर रखी थी कि वह अपने दुपट्टे का जरा सा घूंघट यूं निकाल कर रखे कि आसानी से कोई इसकी शक्ल ना देख सके। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म की रोशनी और मुसाफिरों के हुजूम में अपने एजेंट साधु को ढूंढ रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने जेब से गणनाथ साहब का गुटखा निकाला उसका बावाज बुलंद वेज करना शुरू कर दिया। मैं इंटेलिजेंस वालों की नजरों को धोखा देना चाहता था। बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से 1.25 घंटा गुजरा। हमारे बेंच पर सोनिया की दूसरी जाने पे की हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी उसे साड़ी का पल्लू आगे किए दूध पिला रही थी। उसने सोनिया से बातें शुरू कर दी कि वो कहाँ जा रही है। सोनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जल्दी से हिंदू औरत से कहा, बहन जी मेरी पत्नी गूंगी है। हिंदू औरत किसी कदर अफसोस का इजहार करते हुए बोली, राम राम इतनी सुंदर पत्नी और गूंगी। प्रभु की लीला है। मैं दोबारा घनत्व की वाणी पढ़ने लगा। सोनिया को मैंने इशारा दे दिया था कि अब वो जबान से एक लफ्ज भी ना निकाले। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि सोनिया के मुंह से बेएहतियाती से निकला हुआ कोई लफ्ज हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में तेजी आ गई। सिख और हिंदू कुल्ली रेलवे लाइन के करीब प्लेटफॉर्म के किनारे पर कतार बनाकर बैठते चले गए। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी शेड से आ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी के डब्बे आकर प्लेटफॉर्म पर लग गए। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर कोई सामान उठाए डब्बे की तरफ बढ़ा। अजीब अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया जो हमारे लिए बड़ा साजगार था। हिंदू औरत भी अपने बच्चे को लेकर कुल्ली के सर पर सामान रखवा कर गाड़ी की तरफ चली गई। हमारी बेंच खाली हो गई। मैंने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा, तुम गूंगी ही बनी रहना, हमारा आदमी बस आता ही होगा। सोनिया ने सरगोशी में कहा, अगर वो ना आया तो क्या करेंगे। मैंने बड़े सुकून से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी ये जुमला मेरी जबान पर ही था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंट साधु आता नजर दिखाई दिया। वो बड़ी शान बेनियादी से चलता हुआ हमारे करीबी बेंच पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ था। उसने आहिस्ता से कहा, सामने वाले डब्बे से पीछे की जानेब तीसरे डब्बे में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें चंडीगढ़ के स्टेशन पर मिलूंगा। जालंधर से गाड़ी बदलनी हो गई। बोर्ड कर चला गया। उसकी जाती मैंने सोनिया को लिया। एजेंट के कहने के मुताबिक एक डब्बे में मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गया। डब्बे में काफी रश था। हम दोनों मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गए। डब्बे में काफी रश था। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर ही बैठ गए। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जालंधर तक का फासला 40 मील है। जो ट्रेन चूंकि तकरीबन हर छोटे स्टेशन पर ठहरती थी, इसलिए ये सफर 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जालंधर पहुंची। यहाँ से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जालंधर के प्लेटफॉर्म खाली हो गए। मैंने कुल्ली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश करने लगी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में खा लिया था। मौसम यहाँ भी खुशगवार था। आसमान इसी तरह अबर आलू था मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पर जरा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे हुए थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ हम क्यों आए और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने उसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार्क पहुंचाया जाएगा। मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस ना की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक उसके साथ वतन वापस नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेहड़ी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने उसे 2 कप चाय लिए और पीने लगे। रेहड़ी वाला हमसे ज्यादा दूर नहीं था। इतने में मुझे प्लेटफॉर्म के दरवाजे की जानेब से अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु ही के भेस में चला आ रहा था। उसने हमें देख लिया था। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गए। मैंने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेहड़ी वाले को दिया। सोनिया का कप भी उसके हवाले किया। रेहड़ी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेहड़ी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेस बदल कर सुराग रसानी करने के कुछ आदाब और उसूल होते हैं। ये बात उन आदाब के मुनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह की रेहड़ी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलट कर वापस आए तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज गार्डन है, तुम लोग रोज गार्डन के पिछले गेट के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे गेट हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफॉर्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी थी। मैंने उसे वही बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दोहरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गटका हाथ में लिए गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पो फट गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जालंधर ही से तैयार हुई थी। वो रवानगी से आधा घंटे पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और थर्ड क्लास के एक डब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना ली। डब्बे में चंद एक ही मुसाफिर थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुंह हाथ धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर गाड़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा। सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा दिया ताकि वो ख्वामखा दूसरों की नजरों में आने से बच जाए। डब्बे में मजीद कुछ हिंदू औरतें मर्द और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिरी ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गए। चंडीगढ़ का इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन कहलाता है। इस इलाके में मैदानों और पहाड़ों दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था, इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी कि मशरकी पंजाब का सदर मकाम था। दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया, हम स्टेशन से बाहर आके एक साइकिल रिक्शे पर बैठे थे, रोज गार्डन की तरफ चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था, मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थी। रिक्शा वाले ने रोज गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा भैया तुम हमें यही उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज गार्डन के अक्विक गेट के पास आए तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाकी रविशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट के एक जानब गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी थी, हम झाड़ियों की ओट में इस तरह बैठ के जैसे सस्ता रही हूँ। यहाँ ज्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूं टहलने लगा जैसे सैर करने वहां आया हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी, टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। उसमें हमारा एजेंट इस हुलिये में निकला कि उसने पतलून और सफेद कमीज पहन रखी थी, दाढ़ी मूछ उसके साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला माता जी मामा जी आइए मैं टैक्सी ले आया हूँ, मामी जी कहाँ हैं? मैंने सोनिया को इशारा किया, वो झाड़ी की ओर से निकल आई। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अपनी सीट पर बैठा था, उसने गर्दन घुमाकर कहा मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीजा आज लग जाएगा, क्षमा कर दीजिएगा आपको वीजे के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वाहे गुरु की कृपा से वीजा लग जाना चाहिए। आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीजा जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारे एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोश गुजार करने के लिए कह रहा था। ये उसका अपना तरीकेकार और हिकमत अमली थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी बड़े कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानिब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड पढ़ा, वहाँ हिंदी पंजाबी अंग्रेजी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। मुझे यहाँ इस मुल्क का नाम जाहिर करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुख्सत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गए। आप हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था, आहिस्ता से बोला इस तरफ हाई कमीशन के दफातर हैं, यहाँ हम नहीं जाएंगे, सामने यही सड़क दाएं जाने छोटी सी कोठी की तरफ जाती है, ये हाई कमिश्नर की रिहायशगाह है, हम उधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहायशगाह के अकबे बरामदे में आकर बांस की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा लगता है हम इसी मुल्क के वसात से वतन पहुंचेंगे, अब कोई बात ना करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारे एजेंट बाहर निकला, इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा। हम एक सजे सजाए कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। इस कमरे से मुलहिक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा कि तुम यहाँ आराम करो, मुझे दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया, सिगरेट सुलगाते हुए कहा अब तुम्हें सिख ही बने रहना होगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन के वसात से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहां से बदरिया हवाई जहाज पाकिस्तान पहुंचा देंगे, सब इंतजाम हो चुका है। मैंने कहा मेरे बारे में क्या हिदायत है, क्या मेरा यूरोप जाना बहुत जरूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया, सोफे पर बैठते हुए बोला इस सिलसिले में तुम जरूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे, थोड़ी देर में वो तुमसे फोन पर बात करेगा। मैंने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मेरा बॉस यहाँ चंडीगढ़ में कैसे आ गए, वो तो अपने वतन अजीज में है। एजेंट बोला वो वहीं से तुम्हारे साथ बात करेगा। बेड के पास सिपाही पर फोन पड़ा था, इस फोन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। मैंने अपने एजेंट से कहा कि क्या वो मुझे तफसील से कुछ नहीं बता सकता? उसने जवाब दिया कि मुझे इसकी इजाजत नहीं है, और हाँ सोनिया के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब वो तुम्हारा दर्द सर नहीं हमारा दर्द सर है। हमने उसे पाकिस्तान पहुंचाने के लिए सिफारती सतह पर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि मिस्र भी हमारा दोस्त और बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमें उसकी इज्जत और वकार का भी पास है। बहरहाल तुम इस फोन के पास ही बैठे रहना, मैं सोनिया के लिए नाश्ते का कहकर अभी आता हूँ। एजेंट चला गया। मैंने बेडरूम का जायजा लिया, बिल्कुल जदीद किस्म का कमरा था। दीवारों पर कोई कैलेंडर, तस्वीर या मोनोग्राम नहीं था। मालूम होता था कि ये मेहमानों के लिए बनाया गया है। दीवार के ऊपर लगा हुआ एयर कंडीशनर चल रहा था। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि फोन की घंटी बोल उठी। मैंने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा, उसके साथ ही हमारे एजेंट भी कमरे में आ गया। उसने फोन की घंटी की आवाज सुनकर इशारा किया कि रिसीवर उठाओ, ये तुम्हारा ही फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कोड नंबर है, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? मैंने आवाज पहचान ली थी, ये हमारे पुराने बॉस चौधरी साहब की थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। मैंने उनका कोड नंबर सुन लिया था, ये वही कोड नंबर था जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे बताया था। अब मैंने भी अपना कोड नंबर बता दिया। दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने कहा, हमारा एजेंट नंबर 11 तुम्हारे साथ है, वो जैसे कहे वैसे ही करना, तुम जो चीज अपने साथ लाए हो वो उसके हवाले कर दो, वो हम तक पहुंच जाएगी, क्या तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं अपनी चीज खुद लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ से आवाज हवा में गायब होकर बिखर सी जाती थी। साफ मालूम हो रहा था कि सरहद पार से वायरलेस पर बातचीत की जा रही है। बीच बीच में बातचीत का रब्ता जकलक मुनकता भी हो जाता था। चौधरी साहब की आवाज आई, तुम्हारी खिदमत वतन के लिए बहुत कीमती है, हम उनकी कदर करते हैं, अभी तुम्हारे वतन वापस आने का वक्त नहीं हुआ है, हमारा आदमी नंबर तुम्हें सब कुछ बता देगा, खुदा हाफिज। गुफ्तगू का सिलसिला टूट गया। मैंने रिसीवर रख दिया और हमारे एजेंट मेरे करीबी सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें एक इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मिशन सौंपा जा रहा है। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुने।